हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 20 इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान् वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। अध्याय 12 श्लोक संख्या 20। इन अत्यंत ही पवित्र और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए अत्यंत ही मधुर शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत् परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत् परमा भक्त तास्ते अतीव मे प्रियः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ये तु धर्मामृतमिदं Yathuktam paryupasati Shraddhadhanamat parama Bhaktasti divame priya. Shabdart ye yani jo, to yani lekin, dharma, dharm rupi amritam, amrit ko idam is. यथा जिस तरह से या जैसा उक्तम कहा गया, पर उपासते पूर्णतया तत्पर रहते हैं, श्रद्धाधाना श्रद्धा के साथ, मत परमा मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए, भक्तास भक्तजन ते वो, अतीव अत्यधिक में मेरे, प्रिया प्रिय हैं। अनुवाद, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक, मैया वेश्य मनो ये माम, यानी मुझ पर मन को स्थिर करके वहां से लेकर, ये तो धर्मामृतमिदम, नित्य सेवा इस धर्म को, यहां तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों का की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ पर लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति की के विधि विधानों का पालन करता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की स्तुति की गई है, इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान प्राप्त कर पार करने होते हैं। आप इसे देखिए, सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। श्रीमद् भगवद गीता की बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राह्य है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए
वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं सुलभ होती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोध्यायः। मूकं कुरुतु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरम् यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो शुरू के जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग के विषय में हैं, और जो आखिर के 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग के विषय में, और सेंटर के जो 6 अध्याय हैं 7-12 वो भक्ति योग के विषय में हैं। अभी ये जो हम आज श्लोक पढ़ रहे हैं वो है 12वें अध्याय का। 12वां अध्याय जो भक्ति योग के 6 चैप्टर हैं उनका अंतिम अध्याय है, और ये जो 20वां श्लोक नंबर 20 है वो भक्ति योग के पोर्शन यानी ये जो पूरा पार्ट है उसका अंतिम श्लोक है, और अंतिम श्लोक जो है वो समझो सारे भक्ति योग को यहाँ पर आके सार दिया गया है कि यदि भगवान को कोई अतीव प्रिय है। देखो भगवान ने ये नहीं कहा यो मद भक्त मैं प्रिय मुझे प्यारा नहीं है, मुझे अति प्यारा नहीं, अतीव लिखा। मतलब भगवान कहते हैं वो जो भक्त भक्तिमास भक्तास्ते, यह शब्द लिखा हुआ है अंतिम शब्द यदि हम देखेंगे भक्तास्ते अतीव में प्रिय, जो भक्त हैं वो मुझे अति प्रिय हैं। यानी अभी हम लोग पहले जो 6 अध्याय पढ़े 1-6 तक, अगर वो कर्मयोग पर हैं तो भगवान ने वहां पर नहीं लिखा कि कर्मी जो है वो मुझे अतीव प्रिय है, कर्मी मुझे प्रिय है भी नहीं लिखा, मुझे ज्यादा प्रिय है तो दूर की बात है, प्रिय भी नहीं लिखा। ज्ञानियों के विषय में भी भगवान ने ये नहीं कहा कि जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। यहाँ पर साफ भगवान ने कहा भक्तास्ते तीव में प्रिय, जो भक्त हैं वो मुझे अतीव प्रिय हैं। मतलब भगवान ने यहाँ पर साफ डिक्लेयर किया है, साफ साफ बताया कर्मी मुझे प्रिय नहीं है, ज्ञानी मुझे प्रिय नहीं है, मायावादी मुझे प्रिय नहीं, योगी मुझे प्रिय नहीं है, यदि मुझे कोई प्रिय है तो वो कौन है, भक्तास्ते अतीव में प्रिय। भक्तों के लिए तो भगवान के हृदय के अंदर जो प्रेम है वो झलकता है। इसीलिए भगवान ने कह दिया 9.29 में कि समोहम सर्वभूतेषु, वैसे तो मैं सबके साथ न्यूट्रल हूँ, किसी के साथ भी मैं न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, न किसी के साथ द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, परंतु अभी मेरी भी एक यूं समझो भगवान की कमजोरी है, ये भजन्ति तो माम भक्तिया, जो मुझसे प्रेम करते हैं भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, प्रेम से मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब प्रेम से ये भजन्ति तो माम भक्त्या मई ते, वो अपने आप को पूरा का पूरा मुझे समर्पित कर देते हैं, मई ते वो मेरे हो जाते हैं, फिर ते भी माँ तेषु चाप्यहम, जब वो मेरे बन जाते हैं तो मैं भी उनका हो जाता हूँ। यानी साफ साफ भगवान ने कहा जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं मैं उनका हो जाता हूँ, भले ही मैं वैसे तो किसी के साथ पक्षपात या द्वेषता नहीं करता। तो आज भगवान कह रहे हैं ये तो धर्मामृतमिदम, धर्म अमृत, ये दो बात यहाँ पर, ये जो शब्द है ना, ये तू लेकिन जो धर्मामृतम, ये जो इस अमृतमयी धर्म का, धर्म का क्या मतलब है, धर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है रिलीजन, और अमृत का मतलब होता है नेक्टर, यानी अमृत जो पीने के बाद आपको अमृतत्व प्राप्त हो, जो पीने के बाद कभी उसका क्षय ना हो, ऐसा ऐसा अमृत। तो इसका मतलब ये भगवान क्या कह रहे हैं, ये तो धर्मामृतम इदम, ये जो अभी धर्म हर किसी का अलग अपना अपना धर्म बनाते हैं, कोई बोलते हैं मेरा ये धर्म है माता की सेवा करना, कोई बोलता है पिता की सेवा करना, कोई बोलता है देश की सेवा करना, कोई बोलता है इस देवी देवता की सेवा करना, हर कोई अपना अपना एक अलग धर्म बनाता है। लेकिन व्हाट इज द टॉप मोस्ट धर्म, है ना, वो धर्म कौन सा है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट धर्म कौन सा है, टॉप मोस्ट धर्म कौन सा है, तो उसके लिए शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवतम कहता है सवै पुंसाम परो धर्मो यतुर्भक्ति अदुक्षजे। सवै पुंसाम मनुष्य का परो धर्मो, मनुष्य के लिए कहा, पुंसाम कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य का परो धर्म यदि कोई है तो वो क्या है, यतुर्भक्ति अदुक्षजे। यही यहाँ पर जिस भक्ति की बात की जा रही है ना, भक्तास्ते अतीव में प्रिय, तो भागवत कहता है जीव का, मनुष्य का सबसे ज्यादा परम जो धर्म है वो है भगवान की भक्ति करना, और उसी से क्या होगा, ये आत्मा सुप्रति प्रसिद्धति, आत्मा को यदि वास्तव में आनंद प्रदान करना है, आत्मा को, क्योंकि हम आत्मा हैं और हम आत्मा को ही आनंद प्रदान करने के लिए ये सारे धर्मों को फॉलो कर रहे हैं, हम आज जो भी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम सेटिस्फाई हों। अब ये अलग बात है, अज्ञानता के कारण हम अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं और हम समझते हैं शरीर से रिलेटेड वस्तुओं को प्राप्त करके हम आनंदित होंगे, लेकिन आनंदित होने का सही तरीका हमें शास्त्र बताता है कि यदि आत्मा को प्रसन्न करना है तो उसके लिए क्या करना है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अदोक्षजे। यदि आप अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करोगे तभी आपकी आत्मा को संतुष्ट कर सकोगे, लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहितुकी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए और अप्रतिहिता होनी चाहिए, इसके अंदर खंडन नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो ऐसी भक्ति से क्या होगा, आप वो भगवान जब आपको प्रेम प्रदान करेगा, भगवान कहते हैं अतीव में प्रिय, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ जो कि इस टॉप मोस्ट धर्म को फॉलो करके मेरी भक्ति करता है, उसे अमृतत्व प्राप्त करवाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा, ये तो धर्मामृतम, ये धर्म का, ये धर्म को जो फॉलो करेगा उसको अमृत की प्राप्ति होगी। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने 9.1 में बताया, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात। जब आप इस भक्ति को जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तुम्हें परम गुह्य ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ उससे जानकर क्या होगा, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, तुम संसार के सारे अशुभों से क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। और ये भक्ति कैसी है, प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये प्रत्यक्ष है, ये करके प्रैक्टिकल करके देखने की है, ऐसा नहीं है कि आपने बस भक्ति के विषय में श्रवण कर लिया तो आपको उसका आनंद आ गया, नहीं, उसको प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये धर्म जो यहाँ पर भी धर्म्यम लिखा है ना, ये जो धर्म है यानी भगवान की जो भक्ति है वो करके देखने के लिए, देखने से क्या होगा, सुसुखम कर तुम अव्ययम, करने में बहुत ही सुखदायक है। बहुत आनंद प्राप्त होता है। वास्तव में भक्तों, ये जो चैप्टर है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि इस अध्याय में श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 20 तक, क्योंकि पहले श्लोक में तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान मुझे ये बताओ कि भक्ति करना तो तुम्हारी शरण में आना तो अनिवार्य है, क्योंकि जब भगवान के विश्व रूप को देख लिया चैप्टर नंबर 11 में, तो फिर उसे ये तो पता चल गया कि भगवान की शरण में आना अनिवार्य है। अब भगवान के तो बहुत सारे स्वरूप हैं, भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है, भगवान परमात्मा भी है, तो एक कौन सा तरीका ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा तरीका बेस्ट है कि हम भगवान की शरण में जाएं, वो तरीका कौन सा है, तो वो तरीका कौन बताएगा? भगवान सामने खड़े तो अर्जुन ने पूछ लिया, हमारे लिए पूछा है क्योंकि अर्जुन तो साक्षात भगवान की शरण में है, तो हमारे लिए पूछ रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परियुपासते, वो जो कंटिन्यूस आपकी भक्ति करते रहते हैं, और ये चाप यक्षरम अव्यक्तम, और जो दूसरे हैं जो अक्षर अव्यक्त, जो दिखता नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, उनकी भक्ति करते हैं या उनकी शरण में हैं, तेषां के योगवित्तम, आप बताओ उनमें से परम सिद्धि कौन है, उनमें से परफेक्ट कौन है? तो भगवान ने एकदम स्पष्ट बताया, मैया वेश्य मनो ये माम, जिसका मन मुझ में आविष्ट है, हृदय के अंदर मेरे अतिरिक्त और कोई विचार आता ही नहीं है, जो केवल मुझसे प्रेम करता है, मन मुझ में टिका हुआ है, नित्य युक्ता उपासते, कंटिन्यूस मेरी भक्ति करता है, उपासते मेरे साथ रहता है, मुझसे दूर नहीं होता, और श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धा उसके अंदर इतनी अटूट श्रद्धा है मेरे ऊपर, परयोपेता यानी कि उसे पता है कि मेरे अतिरिक्त और कोई भी उसे आनंद प्राप्त नहीं करा सकता, ऐसी श्रद्धा वाला ते में युक्त तमामता, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि वो ज्यादा सिद्ध है। फिर भी जो दूसरे हैं, जो कि ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परियुपासते, जो कि अक्षर अनिर्देश अक्षर है, मतलब जो दिखता नहीं है, और उसको फिर कैसे जानते हैं, नो डायरेक्शन अनिर्देशम, कोई भी उसका डायरेक्ट मतलब उसको बताने वाला नहीं है, पर उपासते उसकी भक्ति करते हैं, यानी उसकी भक्ति कैसे करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे ना, अब सामने तो है ही नहीं, अगरबत्ती अर्पण करके या फिर आरती करके या प्रसाद भोग लगा के तो उसकी उपासना नहीं करेंगे, वो कैसे करेंगे, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, सर्वत्र गमन चिंत्यम च, वो सोचते हैं कि वो हर जगह पर है, दिखता कैसा है, अचिंत्यम, दिखेगा कैसे, चिंतन नहीं किया जा सकता उसका, कूटस्थम, वो कूटस्थ है मतलब वो अपरिवर्तित है, अचलम एक जगह पर स्थिर है, ध्रुवम है, और संयम यानी वश में अपनी इंद्रियों को, संयम इंद्रिय ग्रामम, अपनी सारी इंद्रियों को, ग्रामम मतलब पूरा गांव, जितनी भी इंद्रियां हैं उनको वश में करके, सर्वत्र समबुद्धया, हर किसी में एक जैसी बुद्धि के साथ, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो भी मुझे प्राप्त करते हैं, सर्वभूते हिते रता, वो सब भूतों के कल्याण के लिए काम करते हैं और हर जगह पर मुझे देखते हैं, फिर वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, वो भी आपको प्राप्त करते हैं, तो ठीक है, कोई भी रास्ता तो एक ही बात तो एक ही है ना, डेस्टिनेशन तो एक ही है। तब कृष्ण कहते हैं, हाँ डेस्टिनेशन तो मैं ही हूँ, मगर फिर भी जो रास्ता बहुत कठिन है उसमें एक्सीडेंट के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए जो ये निर्विशेष का मार्ग है, निराकारवादियों के लिए जो मार्ग है, उसके लिए भगवान कहते हैं नंबर 5 में, क्लेशो अधिक तरस्तेषां, उनके लिए तो बहुत ज्यादा कठिन है, क्लेशो अधिक, भक्ति में भी थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, 16 माला जप करनी पड़ेगी, मंगला आरती करना पड़ेगी, और इसके अतिरिक्त भी भगवान की सेवा करनी पड़ेगी उसमें, लेकिन क्योंकि उसमें प्रेम है, तो प्रेम के जिसके साथ हम प्रेम करेंगे उसकी सेवा करना बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि उसका तो स्वरूप ही नहीं है, तो उसके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न भी नहीं होता है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अभी उसके लिए तो उसका जो डेस्टिनेशन है गति भी दुखदायक है, मतलब आगे बढ़ना भी हम लोग प्रेम नहीं है इतना ज्यादा, तो उस रास्ते पर आगे बढ़ना बहुत ज्यादा कठिन है। और दूसरा भगवान कहते हैं देहवद भिरवाप्यते, क्योंकि हम देहवद हैं, हम शरीर में रहते हैं, तो शरीर में रहकर बगैर शरीर वाले का चिंतन करना भी बहुत कठिन है। और उसके अलावा जब हम उस गति को डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्म ज्योति को, तो वो क्योंकि वो गति है वहां में, उसमें गति क्या है ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना, जो निराकारवादी होते हैं उनको ब्रह्म ज्योति, लेकिन वहां पर भी आनंद तो आने वाला नहीं है क्योंकि आत्मा का आनंद तो प्रेम में है, तो वहां पर तो वो अकेला रह जाएगा, उसका प्रेम ही तो उसके साथ में होगा नहीं, तो फिर आनंद आएगा नहीं। इसलिए गतिर दुखम, हर तरह से दुख होगा उसे, क्लेशो देखा तरसते शाम, किसका अव्यक्त आसक्त से तसा, जिसका चित्त अव्यक्त में आसक्त है उसके लिए परेशानी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए वाई टू टेक ट्रबल, है ना, ये जो ट्रबलफुल पाथ है उसको आप क्यों ग्रहण करते हो, जब सिंपल रास्ता है तो मुश्किल रास्ते पर क्यों चले, है ना, वेन द सिंपल एंड इजी पाथ इज अवेलेबल देन वाई वी टेक ट्रबलफुल पाथ, है ना, उस दुखदायक और मुश्किल रास्ते को क्यों चुने जो कि स्वयं भगवान ने मना किया। लेकिन यहां पर ये बात समझने की भगवान साफ बताते कि वो अपने आप को भले ही कितना ज्ञानी बोले लेकिन डिवोटीज आर सो इंटेलिजेंट, है ना, इसलिए वो सिंसियर भी हैं, सिंपल भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, इसलिए वो आसान रास्ते को स्वीकार करते हैं। आगे भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, अर्जुन जो लोग सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर देते हैं और अनन्य नैव योगेन अनन्य योग से मुझ में मिलकर माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तेषा अहम समुद्धरता, उनको मैं सब उद्धरता पूर्ण रूपेण पार कर देता हूँ, किससे मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु संसार जो है ना उससे पार कर देता हूँ उसको, उसको फिर बारंबार जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। और कि कब कितनी देर में लगेगी पार करने में, तो बोलता भवामी न चिरात पार्थ, टाइम नहीं लगेगा, फटाफट पार कर दूंगा, मैया वेशित चेतसा, सिर्फ शर्त इतनी है कि उसका चित्त जो है वो मुझ में लगना चाहिए। इसलिए यदि मेरी पूर्ण कृपा चाहिए तो क्या करना है, आगे बताते हैं श्लोक नंबर 8 में, मैया एवं मन आदत स्व, अपने मन को मुझ में स्थित कर, आदत स्व बिल्कुल मन जो है वो पक्की रीत से भगवान के चरणों में स्थित हो जाए, मैं बुद्धिम निवेश, मन स्थिर हो गया तो बुद्धि केवल भगवान के विषय में विचार करे, निवशिष्यसि मयि एव, इस तरह से भगवान के अंदर यदि हम निवास करते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य होकर और कोई इच्छा नहीं, अतः ऊर्ध्वम न संशय, फिर भगवान कहते हैं फिर निस्संदेह सदैव ऊर्ध्वम ऊपर मुझ में वास करोगे, फिर आपको यह भौतिक मलिनता स्पर्श नहीं करेगी। फिर मानो अर्जुन बोले कि कृष्ण ये सबके लिए संभव नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल आपके विषय में ही सोचे, पूरा मन आपके अंदर ही केंद्रित हो, आपके अंदर ही निवास करें, ऐसा हर किसी के लिए तो संभव नहीं है, फिर वो क्या करें। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर वैसा नहीं कर सकते तो क्या करें, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोपि मयि स्थिरम, यदि अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो क्या करे, अभ्यास योगे न तत्व, अभ्यास योग करे, अभ्यास योग मतलब कि जो यम है नियम है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करे। अब ये जो है हमारी स्थिति, हम अपना मन पूरी की तरह भगवान के अंदर स्थिर नहीं कर सकते क्योंकि संसार में रहते तो बहुत सारी संसारी हमारे कर्तव्य भी होते हैं, तो भगवान कहते फिर भी अभ्यास तो करो, 16 माला जप करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, एकादशी का उपवास करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, गीता भागवतम का श्रवण करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अभ्यास ये न तत्व माम इच्छा तुम धनंजय, एटलीस्ट मन में ये इच्छा तो होनी चाहिए कि भगवान को प्राप्त करें, तो ऐसे धीरे धीरे वो मुझे प्राप्त करेगा। तो फिर मानो पूछे कि अगर कोई अभ्यास भी नहीं कर सकता, 16 माला जप भी नहीं कर सकता, और दूसरा भी मतलब दूसरे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, तो क्या करें? तब भगवान कहते हैं अभ्यास या समर्थोसी, जो अभ्यास करने के लिए भी असमर्थ है, तो मत कर्म परमो भवा, मेरे लिए कर्म करे ना, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन सिद्धिम अवाप्सि, तो मेरे लिए यदि वो कर्म करेगा, मतलब जो डायरेक्ट से भक्ति नहीं कर सकता है, तो मेरे लिए कर्म करे, मेरे लिए सेवा करे, जैसे अपने धन को मुझ में लगाए, जो भी उसकी शक्ति है, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन जो उसके पास है वो मुझे समर्पित करे। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भक्ति कर सकता है वो भी ये दूसरे काम करे। वैसे जो भगवान का बताने का मेन तरीका क्या है, मेन बात क्या है कि मन मुझ में लगाना है, मेरी भक्ति करनी है, अगर वो नहीं कर सकता तो अभ्यास करे सेकंड लेवल पर, अगर वो भी नहीं कर सकता तो फिर क्या करे, मेरे लिए कार्य करने की है ना कोशिश करे। मतलब जो भगवान के भक्त हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, प्रचार करते हैं, उनकी सेवा करें, किसी तरह से उनको, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि भाई हर कार्य करने के लिए भूमि धन संगठन की आवश्यकता होती है, तो किसी तरह से भक्तों की हेल्प करें, प्रचार करने में, प्रचार कार्य करने में मतलब उनकी सहायता करें जिससे भक्ति बढ़े। अगर वो भी नहीं कर सकता तो भगवान कहते हैं आगे, अतः तदप्य शक्तोसि कर्तुम मध्योग आश्रिता, अगर वो इस तरह से भी कर्म भी नहीं कर सकता तो क्या करें, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर दो। भले जो भी कर्म कर रहे हो, बस ये सोचो कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ। क्या सर्व कर्म फल त्याग तथा कुरु यदात्मवान, अगर वो ऐसा भी करता है तो भी आत्मा में स्थित होने का प्रयत्न करे ना, सिर्फ मतलब शरीर के लेवल से तो ऊपर उठे कम से कम, खाली में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य करने के लिए इच्छित हूँ ये तो ना करे, ये तो सोचे कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तक तो पहुंचे। तो ये योग सीढ़ी है, यानी कर्म कांड के बाद कर्म योग, कर्म योग के बाद ज्ञान योग, और ज्ञान योग के बाद भक्ति योग। वो बात यहाँ पर भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 12 में, वे कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासम, ज्ञान का अभ्यास करना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, और ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। खाली आप ज्ञान प्राप्त कर लो लेकिन ध्यान नहीं है कि मैं किसका कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, तो वो ज्यादा ध्यान ज्यादा ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, ध्यान कर्म फल त्यागम, ध्यान से भी ज्यादा कर्म फल का त्याग, और त्यागा शांति अनर्थनम, यानी त्याग जब हम करेंगे भगवान के लिए सारे कर्मों का परित्याग कर देंगे, जैसे पहले श्लोक नंबर 8 में भगवान ने बताया था कि सारे कर्मों का, ये तो सर्वाणि कर्माणि मई संन्यस्य मत परा, जो सब कुछ मुझे अर्पण कर देता है, यत करोषि यदश्नासि यज्ञ होसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तदा तत्कुरु वमद अर्पण, वो सब मुझे अर्पण करता है। तो ऐसे भक्त से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो सारे कार्यों में केवल भगवान की प्रसन्नता को देखता है। और उसके बाद भगवान ने उन व्यक्तियों के विषय में बताया जो उन्हें बहुत प्रिय लगते हैं, कौन से वो कार्य हैं जो हम करते हैं तो भगवान हमसे प्रेम करना शुरू कर प्रेम मतलब करने लगते हैं। भगवान ने कहा सबसे पहले तो भगवान ने बता दिया कि आपको आत्मा के प्लेटफॉर्म पे आना है, आप सिर्फ अपने आप को ये शरीर मानकर चलोगे तब तो ये सब संभव नहीं है। जो ये भगवान ने क्वालिटीज बताई है ना, वो एटलीस्ट हमें ये सोचना है कि हम ये शरीर नहीं है, क्योंकि जब हम शरीर के प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो ये नहीं सोचेंगे अद्वैष्टा सर्वभूताना, फिर तो द्वेष ही द्वेष दिखेगा, कौन व्यक्ति है जो किसी से द्वेष नहीं करता। अभी पहले जमाने में क्या होता था, दुश्मन अलग से होते थे, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन। फिर अभी क्या है, एक ही घर में दो लोग आपस में दुश्मन है, दिल के अंदर सबके सबके लिए द्वेष भरा हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबके साथ मैत्री भाव, मैत्र करुणा एवच, हृदय के अंदर मित्रता होनी चाहिए सबके लिए, करुणा होनी चाहिए। जो ऐसा करता है निर्ममो निरहंकार, किसी के अंदर मोह नहीं है, वो वस्तु मेरी है ऐसा अहंकार नहीं है। सम दुख सुख क्षमी, जो सुख और दुख में एक समान है, क्षमावान है। संतुष्ट सततम योगी, क्योंकि मुझ पर पूरा भरोसा रखता है, इसे जो भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट है, चाहे वो आनंददायक हो या दुखदायक हो। यदात्मा दृढ़ निश्चय, उसे दृढ़ निश्चय है कि मैं जो करूंगा उसकी भलाई के लिए करूंगा। मैं अर्पित मनोबुद्धि, उसने मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दिया। यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय लगता है। आगे भगवान कहते हैं यस्मान नो द्विजते लोको, जिससे दूसरों को कष्ट नहीं होता, विचलित नहीं करता दूसरों को, लोका नो द्विजते सया, और दूसरों की किसी बात से विचलित भी नहीं होता, जो जैसे करते रहने दो। हर्षामर्ष भयोद्वैग, चाहे हर्ष हो चाहे दुख हो चाहे भय हो या चिंता, उनसे मुक्त हो, ये सबसे मुक्त है। ये भौतिक वस्तुओं के अंदर उसका इतना अटैचमेंट नहीं होता। अगर भौतिक वस्तु कोई मिल जाए तो खुशी होना, नहीं मिले तो दुख होना, आगे की चिंता करना, पीछे का भय करना, ये सब वो नहीं करता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय लगता है। और क्यों नहीं करता है, या तो आत्मा दृढ़ निश्चय, उसको दृढ़ निश्चय होता है कि मैं कभी उसके साथ बुरा नहीं करूंगा, उसको वो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर श्रद्धा रखता है। अनपेक्षा शुचिर दक्षा, किसी के साथ कोई आकांक्षा नहीं रखता, अनपेक्षा इच्छा नहीं रखता, पवित्र रहता, एक्सपर्ट है, दक्ष। उदासीनो, उदासीन है, किसी के अंदर लिप्त नहीं रहता, चिंता से मुक्त है। गतव्यथ, सारे कष्टों से मुक्त है। और सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ यानी कि सारे भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता, सिर्फ मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसे भक्त को मैं बहुत प्रेम करता हूँ। आगे भगवान ने बहुत सुंदर कहा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है, न शोचति न कांक्षति, जो न शोक करता है और न इच्छा करता है। शुभा शुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ सारे फलों को त्याग करता है। भक्तिमान्य समय प्रिय, ऐसे भक्त को मैं बहुत प्रेम करता हूँ। समह शत्रु च मित्रे च, जिसके लिए शत्रु और मित्र बराबर हैं, क्योंकि वो जानता है शत्रु और मित्र तो किसके हैं, इस शरीर के हैं। तथा मान अपमान यो, चाहे उसका कोई मान करता है या अपमान करता है, वो जानता है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का तो कोई भी अपमान नहीं कर सकता, कोई सम्मान नहीं कर सकता। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो सम रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, गर्मी और सर्दी में, सुख और दुख में, समह संग विवर्जिता, मतलब संगति से मुक्त है ये, सब हर चीज में समान है और दुस्संगति से मुक्त है। ऐसा नहीं वो हर किसी के साथ संगति भी कर लेता है, नहीं, वो जानता है, दक्ष है, एक्सपर्ट है, वो जानता है कि यदि मैं अपराधियों के साथ या अभक्तों के साथ या मायावादियों के साथ निराकारवादियों के साथ संग करूंगा तो भक्ति से गिरूंगा, इसलिए संग विवर्जित। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा हो या स्तुति हो उसमें समान रहता है, तुल्य रहता है। मौनी सदा मौन रहता है, मतलब वो बात करता है तो केवल भगवान के विषय में बात करता है। संतुष्ट हो ये न खेना चित, चाहे जो भी उसे प्राप्त होता है या प्राप्त नहीं भी होता है या प्राप्त होकर छिन भी जाता है, संतुष्ट रहता है। अनिकेत, वो अपने लिए घर की भी परवाह नहीं करता। स्थिरमति, बुद्धि उसकी स्थिर होती है भक्तिमान, भक्ति के अंदर वो भक्त होता है और वो जानता है कि मैं सदैव उसका साथ दूंगा, तो वो स्थिर है, जो भी उसके साथ हो रहा होता है उसमें शांत रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और आगे आज भगवान ने कहा, ये तो धर्मामृतम इदम, ये जो भक्ति का जो अमृत है उस उसको प्राप्त करता है। यथोक्तम पर्युपासते, यथोक्तम जो मैंने बताया है अभी, उक्तम का मतलब होता है जो कहा है मैंने ये सारा अमृत, तो पर्युपासते, पर्युपासते मतलब जो इसको फॉलो करता है पूर्णतया, इसमें लगा रहता है किसके साथ, श्रद्धाधाना, पूरी श्रद्धा के साथ जब वो मेरे इस भक्ति के कार्य में लगा रहता है पूरी श्रद्धा के साथ 100%। पर्युपासते यानी श्रद्धाधाना, श्रद्धा के साथ जब वो 100% इस भक्ति पद का सेवन करता है, मत परमा, क्या करना है उसको, वो क्या सोचता है, मत परमा, मत परमा का मतलब बहुत ही सुंदर है, पूर्णतया तत्पर रहता है। मतलब मत परमा का मतलब होता है मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानता है, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इतनी उसको श्रद्धा होती है कि भगवान परम पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, अगर वो देना चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, अगर वो कुछ भी मतलब जो उनकी इच्छा है वही, उसी में मेरी भलाई है, उसी में मेरा कल्याण है। मत परमा, कृष्ण के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट है कि कृष्ण कभी भी पूरा नहीं करेंगे, जो भी कर रहे हैं उसी में मेरी भलाई है। ऐसा भक्त, भक्तास्ते अतीव में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रिय लगता है। तो ये सारा प्रोसेस भगवान ने बताया है, ये जो सारी विधियां बताई हैं कि ये सारे गुण होने चाहिए भक्ति के अंदर, और हमने कल पढ़ा कि ये सारे गुण कैसे आएंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। देखो भगवान के पास पहुंचने के भक्ति के जो स्तर है ना, उसमें तो टोटल नौ स्तर है, नौ स्टेज है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसमें भक्त को सिर्फ और सिर्फ शुरू के चार कर मतलब तीन करने होते हैं, शुरू के तीन काम भक्त को करने होते हैं, और आगे के छह काम जो है ना वो भगवान को करने होते हैं, डबल काम भगवान को करना होता है, हम लोगों को तो तीन करने होते हैं। कौन से, देखो भक्ति के स्तर है नौ, उसमें सबसे पहली है आदव श्रद्धा, भक्त को अपनी श्रद्धा को डिवेलप करना है, भगवान के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा होती है, उसे सुनते हैं, भक्तों का संग करते 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 उस श्रद्धा को डिवेलप करना है, कैसे भी करके, जब तक श्रद्धा बढ़ेगी नहीं तब तक हम भगवान के लिए कुछ परित्याग नहीं कर सकते, भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते, क्योंकि श्रद्धा जितनी बढ़ेगी, और श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, श्री प्रभुपाल जी साफ बताते हैं, अगर आपको शराबी बनना है तो शराबियों के साथ बैठ जाओ, अगर भक्त बनना है तो भक्तों के साथ बैठ जाओ, फिर क्या है, आदर श्रद्धा तथा साधु संग, फिर आपको भक्तों का संग करना चाहिए। जब तक आपकी श्रद्धा है, कुछ लोगों के अंदर श्रद्धा होती है लेकिन वो भगवान के भक्तों का संग नहीं करते तो वो भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते, भले कुछ भी हो जाए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको भक्तों का संग चाहिए, पावर चाहिए भक्तों का, उनको देख कर, क्योंकि ये संसार जो है वो इतना इसके अंदर माया है कि जब तक हमें साथ नहीं मिलेगा ना हम भक्ति नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी हो जाए हम भक्तों का संग त्याग नहीं सकते, और यदि हमें भक्तों भक्ति करनी है तो भक्तों का संग बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रद्धा के बाद आपको भक्तों का संग ढूंढना है, ऐसे पवित्र भक्तों का, ऐसे शुद्ध भक्तों का जो कि वास्तव में भक्त हैं, ऐसा नहीं है भक्तों का संग का मतलब नहीं है जो बस तिलक लगाता है, कंठी पहनता है और भले कुछ भी कर रहा होता है, भक्ति को देखना है कि क्या वो भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशन को सीरियसली फॉलो कर रहा है। हर किसी का संग करने के लिए नहीं कहा, शास्त्र कहता है कि कृष्णेश यत्यगिरितम मानस आदरियत, जो खाली मुंह से भगवान का नाम लेता है उसका दूर से ही मन से आदर करो, और दीक्षाती चेत प्रणति भिक्ष भजन तमीशम, जो दीक्षा दे जिसने दीक्षा ले ली हो और वो विग्रह सेवा करता है उसका मन से आदर करो, लेकिन शुश्रूषया भजन भिक्ष भजन अनन्यमन्य निंदादि शून्यरिदमिप्सित संगलब्ध, जो किसी की निंदा नहीं करता है, जो निंदा से शून्य है और अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है,
ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए ताकि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। तो पहला काम क्या है, श्रद्धा, और दूसरे के बाद उसके बाद साधु संग को ढूंढ कर साधु संग करना। और जब ऐसे भक्तों का संग हो जाए तो खाली उनके साथ सिमट के रहने के लिए नहीं कहा गया है ना, क्योंकि भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ, साधुओं के साथ तो खटमल भी रहते हैं, कभी कभी मच्छर भी रहते हैं, लेकिन खाली उनका खून चूसने के लिए, उनसे कोई वो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं करते। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि अगर हम किसी साधु का संग कर रहे हैं तो कहीं उसका खून तो नहीं चूस रहे हैं, उसका खाली उसको तंग तो नहीं कर रहे हैं। उसके साथ हमें क्या करना है, भजन क्रिया, अपनी भक्ति को इंक्रीज करना है, भजन क्रिया करनी है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हमें बताते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, बस इतना हमें करना है। हम इसी से आगे बढ़ेंगे, ये जो भक्ति की सारी जो सबसे बड़ा जो टॉप मोस्ट जो स्टेज है उसको प्राप्त करने के लिए आपको यही करना है। श्रद्धा आपके अंदर है, आपको दो काम करने हैं, साधु संग करना है कंटिन्यू। जितना अच्छा आप भक्तों का संग करोगे, जितना अच्छे तरीके से आप भक्तों के आदेशों का पालन करोगे, भजन क्रिया जितनी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, जितना श्रद्धा के साथ, सिंसियरिटी के साथ आप भजन क्रिया करते जाओगे, नाम में उतना रस आता जाएगा। अभी नाम के अंदर रस नहीं है, आप फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि श्रद्धा है ना, साधु संग है और भजन क्रिया कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या होगा, अभी क्यों नहीं रस आ रहा है, क्योंकि हृदय के अंदर अनर्थ है, अपराध है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य अंदर भरा हुआ है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। तो साधु संग के साथ जैसे जैसे भजन क्रिया करते जाएंगे तो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति, खुद ब खुद अनर्थों का शमन होता जाएगा। भजन क्रिया जितनी स्ट्रांग होगी और साधु संग जितना शुद्ध होगा तो हृदय के अनर्थ जो है वो समाप्त होते जाएंगे। और फिर उसके बाद पांचवा स्टेप है निष्ठा, भक्ति के अंदर निष्ठा आती जाएगी। अभी हमारी निष्ठा कच्ची है ना, जब अभी तो सोलह माला जप करते हैं थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, फिर बोलते हैं भाई कृष्णा तो नहीं सुन रहा है, किसी से पीर फकीर से धागा करा के आते हैं, ये करा के आते हैं, वो करा के आते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ये बहुत मंदी चल रही है, धन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य खराब है, ये करें, निष्ठा नहीं है भगवान के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम भक्तों का संग करेंगे, भजन क्रिया दृढ़ होती जाएगी और अनर्थ निवृत्त होते जाएंगे तो निष्ठा पक्की होगी। जब तक निष्ठा हमारी नहीं हो जाती कि सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने से ही मेरा कल्याण होगा, इस बात पर पूरी अंदर से निष्ठा पक्की नहीं हो जाती है, तब तक हमें रुचि नहीं होती है, टेस्ट नहीं आता है नाम का। और जब निष्ठा पक्की हो जाएगी उसके बाद जो है ना वो आता है रुचि, फिर टेस्ट आने लगता है। अभी तो टेस्ट आ रहा नहीं है, उसका कारण क्या है, हृदय के अंदर अनर्थ है, अनर्थों के कारण निष्ठा पक्की नहीं है, और निष्ठा पक्की नहीं इसलिए रुचि नहीं आ रही। लेकिन जैसे जैसे साधु संग शुद्ध होगा, जैसे जैसे भजन क्रिया सिंसियरली और सीरियसली होगी, उससे वैसे अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे और निष्ठा बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी तो रुचि आने लगेगी। और जैसे जैसे टेस्ट आने लगेगा ना इन सारे भक्ति के कार्यों में, आनंद आने लगेगा, फिर क्या होगा, आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी उसका ध्यान आ जाए, कृष्ण के प्रति इतना हो कि हम सोचे मतलब हम सोच कुछ और रहे हो और खुद ब खुद कृष्ण का ख्याल आ जाए, है ना, किसी का नाम ने लपटे कृष्ण का नाम आ जाए, बस कृष्ण के बारे में खुद ब खुद आसक्ति होती है ना, जैसे किसी माता को कैसे अपने संतान के प्रति आसक्ति होती है, वो कोई भी कार्य कर रही होती है तो उसे याद आता है कि मेरा छोटा बच्चा मैं अभी पलंग पे सुला के आई हूँ, कहीं वो करवट न बदल दे, क्योंकि अभी करवट बदलना सीखा है तो वो कहीं गिर न जाए। तो हर वक्त उसको जैसे जैसे हमारी रुचि निष्ठा बढ़ेगी, रुचि उत्पन्न होगी तो आसक्ति बढ़ती जाएगी, और जैसे आसक्ति बढ़ेगी उस हमें कुछ नहीं करना है, ये सब भगवान कर रहे हैं, हमें खाली क्या करना है, साधु संग करना है और भजन क्रिया करना है। और इस आगे हम और साधु संग करेंगे, भक्तों के संग में भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, तो फिर क्या होगा, भाव उत्पन्न होगा। भाव क्या उत्पन्न होगा कि कृष्ण मेरा है, ये उसको रियलाइज होने लगेगा कि कृष्ण मेरा है, उस वो कृष्ण को अपनी संपत्ति समझने लगता है। कृष्ण मेरा है, पहले सारी दुनिया की सारी संपत्ति को अपना समझता था ना, लेकिन जैसे जैसे आसक्ति बढ़ेगी तो वो समझेगा कि कृष्ण मेरा है। और उसके बाद एक अंतिम स्टेप है, वो है प्रेम। और प्रेम में क्या है, वो ये सोचने लगेगा कि मैं कृष्ण का हूं, फिर मेरा कृष्ण है या नहीं है और कुछ मेरे पास है या नहीं है, बस मेरा अगर कोई अस्तित्व है तो वो यही है कि मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण की संपत्ति हूं, कृष्ण मेरे प्रोपराइटर हैं, उसे जो करना है करे मेरे साथ। आश्लिष्य वा पादरथम पिनष्टु माम अदर्शनम मर्महताम करुत्वा यथा तथा वा विदधातु लंपटु मत प्राणमा नाथस्तु स मे प्रिय न मे न परः। भले वो मुझे अपने दर्शन से वंचित रखकर, अपने पैरों के नीचे कुचल कर मेरा हृदय तोड़ दे, वो मुझे आलिंगन करे या ठुकरा दे, परंतु वो जो भी करे वो तो लंपट है ना, उसकी इच्छा उसको छू अच्छा लगता है करे, परंतु उसके अतिरिक्त मेरा और कोई ठोर नहीं है, मेरा और कोई प्रीतम नहीं है, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। ये है प्रेम की स्तुति। तो ये सब आएगा कैसे, अगर हम साधु संग करते रहेंगे और भजन क्रिया करते रहेंगे तो भक्ति के सारे हाईएस्ट टॉप स्टेप की भक्ति को हम पहुंचेंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर है, कि इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न करता है। सुसंगति मतलब साधु संघ, जब भक्तों का संघ होगा तो क्या होगा, भक्ति के प्रति आसक्ति होगी। इसलिए हमें ढूंढना चाहिए, निराकारवादियों का संघ नहीं करना चाहिए, मायावादियों का संगति नहीं करना चाहिए। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों की संगति करनी चाहिए। उससे क्या होगा, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, फिर वो जान जाएगा कि एक प्रामाणिक गुरु बनाकर ही मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। साधु संघ से ही वो गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है ना, फिर श्रद्धा के साथ सुनता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, आसक्ति होती है और फिर क्या करता है, कीर्तन करता है यानी भजन क्रिया करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है ना, कि ये चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए, चार नियम का पालन करता है, विधि विधानों का पालन करके इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, इसी मार्ग के विषय में बताया गया है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भगवत प्राप्ति करने के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। भक्ति करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। और आगे श्री प्रभुपाद जी ने बताया, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर नहीं मिलता है तब तक भले वो निराकार, वो जो निराकार लोग हैं उनका संग कर सकता है, लेकिन शुद्ध भक्त को जब आप प्राप्त कर सकते हो, शुद्ध भक्ति डायरेक्ट से भगवान को प्राप्त कराने वाली है। भगवान ने स्वयं कहा क्या कि भक्तास्ते अतीव में प्रिय, भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तो यदि हमारा गोल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है तो हमें सीधा भगवान की भक्ति में लगना चाहिए ना, क्योंकि भगवान ने कहा भक्त मुझे प्रिय लगते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने अंतिम अपना निर्णय देते हुए कहा है कि यदि आपको सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सारे सोपान पार नहीं करने पड़ते, फिर उसको ये निराकार, ये परमात्मा, ये ध्यान, ये सब नहीं करना, बस आप भक्तों की संगति में आ जाओ, भजन क्रिया करो और दूसरे स्टेप आपको पार करने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता के बीच के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत ही हृदयग्राही है। बीच के 6 अध्याय, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, उसमें क्या है, बस खाली कृष्ण को मन में कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण से प्रेम करना है, बुद्धि से कृष्ण के लिए सोचना है, कृष्ण के लिए जो भी कार्य करें उनको समर्पित करना है, कृष्ण में आविष्ट हो जाना है। तो ये बहुत ही हृदयग्राही है, मतलब क्योंकि हम साकार हैं, हम
देहधारी हैं तो प्रेम करना हमारा स्वभाव है, तो ये बहुत ही आसान है हमारे लिए। किसी को जीवन निर्वाह, फिर उसको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए भौतिक वस्तुओं की, माद चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भक्ति में लग जाएगा। जब वो अपना सब कुछ कृष्ण को मान जाता है तो कृष्ण उसके ऊपर खुद ही कृपा करेंगे, क्योंकि भगवत कृपा से सब कुछ उसे खुद ब खुद सुलभ प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा योग क्षेम वहां में हम, जो तुम्हारे पास नहीं होगा वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, और जो तुम्हारे पास होगा उसकी सुरक्षा करूंगा। तो भक्त को किसी भी चीज के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का जो ये भक्ति मार्ग है वो सुसुखम है। सुसुखम यानी कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की, और सुसुगम है। सुसुगम मतलब भगवान कहते हैं भवामी न चिरात पार्थ, दोबारा दोबारा उसको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। सुसुगम आसानी से मेरे पास प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। तेषाम अहम समुद्धरता, भगवान ने कहा भक्त को मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, अपने अपने कंधे पे उठा कर लेके जाऊंगा, गोद में बिठा के लेके जाऊंगा। और इसलिए भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। और भगवान की भक्ति का आसान तरीका है भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि पैसा साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।